शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 12। नाथान की फटकार। फिर यहावे ने नाथान को दाविद के पास भेजा। नाथान ने आकर दाविद से कहा, किसी नगर में दो व्यक्ति थे, एक धनी और दूसरा निर्धन। धनी व्यक्ति अनेक पशुओं और भेड़ों का स्वामी था, जिसे उसने मोल ले लिया था, मगर निर्धन के पास सिर्फ एक ही छोटी भेड़ थी जिसे उसने मोल लिया था, और वह उसका पालन पोषण कर रहा था। यह भेड़ उसके बालकों के साथ ही बड़ी हो रही थी। वह उसी व्यक्ति के साथ भोजन करती थी, उसी के प्याले से पीती थी और उसके साथ बिछोने में सोया करती थी। वह उसके लिए उसकी पुत्री समान थी। उस धनी के पास एक यात्री आया हुआ था। उस धनिक ने उस यात्री के सत्कार के लिए अपनी भेड़ों में से कोई भेड़ ना ली, बल्कि उस निर्धन की भेड़ लेकर उस यात्री के लिए भोजन तैयार कर लिया। यह सुनते ही उस धनी व्यक्ति के प्रति दाविद का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने नाथान से कहा, जीवित यहावे की शपथ, जिस व्यक्ति ने यह किया है मृत्यु दंड के योग्य है, इसलिए कि उसने ऐसा किया है, इसलिए कि वह ऐसा निर्दयी है, उसे उस भेड़ की चौगुनी भरपाई करनी होगी। नाथान ने दाविद को उत्तर दिया, आप है वह व्यक्ति, यहावे इज़राइल के परमेश्वर का वचन यह है, इज़राइल पर मैंने तुम्हें राजा बनाया, शाऊल के वारों से मैंने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारे स्वामी का घर मैंने ही तुम्हें दे दिया है, मैंने ही तुम्हारे स्वामी की पत्नियां तुम्हारे अधिकार में कर दी है और तुम्हें इज़राइल और यहूदिया के वंश का अधिकारी बना दिया है। यदि यह सब तुम्हारे विचार से बहुत कम था, मैं तुम्हें इतना ही और दे देता। तुमने यहावे के वचन को क्यों तुच्छ समझा कि तुमने वही किया जो उनकी दृष्टि में गलत है। तुमने हित्ती उरिया पर तलवार चलाई और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। तुमने उरिया को अमोनियों की तलवार से घात किया है। अब तलवार तुम्हारे परिवार का पीछा कभी ना छोड़ेगी। तुमने मुझसे घृणा की है और हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। यहावे का यह कथन है, यह देखना कि मैं तुम्हारे ही परिवार में से तुम्हारे विरुद्ध बुराई उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को लेकर तुम्हारे साथी को दे दूंगा कि वह तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों से दिन के प्रकाश में कुकर्म करे। तुमने तो यह गुप्त में किया, मगर मैं यह पूरे इसराइल के सामने करूंगा, और वह भी सूर्य प्रकाश में। दाविद ने नाथान से कहा, मैंने यहावे के विरुद्ध पाप किया है। नाथान ने दाविद से कहा, तुम्हारा पाप यहावे ने दूर कर दिया है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। फिर भी इस काम के द्वारा तुमने यहावे का तिरस्कार किया है। उस पुत्र की जिसका जन्म होने पर है मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद नाथान अपने घर चले गए। उरिया की पत्नी से दाविद का जो शिशु पैदा हुआ, यहावे ने उस पर वार किया और शिशु गंभीर रूप से रोगी हो गया। दाविद ने अपने शिशु के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। इस समय दाविद ने ना कुछ खाया ना पिया, और वह जाकर सारी रात भूमि पर ही पड़े रहे। घर के सारे पुरनिये उनके निकट इस प्रतीक्षा में ठहरे रहे कि कब उन्हें भूमि पर से उठाए, मगर दाविद ने उठना अस्वीकार किया। उन्होंने उनके साथ भोजन भी ना किया। सातवें दिन शिशु की मृत्यु हो गई। दाविद को इसकी सूचना देने में सेवक झिझक रहे थे कि शिशु की मृत्यु हो चुकी थी। उनका कहना था, देखो जब शिशु जीवित था और हम उन्हें मना रहे थे, उन्होंने हमारी ना सुनी, तब भला हम उन्हें कैसे बताए कि शिशु की मृत्यु हो गई है, कहीं वह अपनी ही कोई हानि ना कर ले। जब दाविद ने ध्यान दिया कि सेवक परस्पर दबे स्वर में बातचीत कर रहे थे, दाविद समझ गए कि शिशु की मृत्यु हो चुकी। दाविद ने सेवकों से प्रश्न किया, क्या शिशु की मृत्यु हो गई? जी हाँ, उन्होंने उत्तर दिया। तब दाविद भूमि से उठे, स्नान कर तेल लगाया और अपने वस्त्र बदले। इसके बाद यहावे के भवन में जाकर उन्होंने उनकी वंदना की और अपने घर चले गए। उन्होंने भोजन मांगा, सेवकों ने उनके सामने भोजन परोस दिया और राजा ने वह खाया। इस पर सेवकों ने दाविद से पूछा, हमें समझ नहीं आया आपने यह क्या किया। जब शिशु जीवित था आप भूखे रहे और रोते रहे। मगर जब शिशु की मृत्यु हो गई आपने उठकर भोजन किया। दाविद ने उत्तर दिया, जब तक शिशु जीवित था मैं उपवास करते हुए रोता रहा, क्योंकि मैं विचार कर रहा था किसे पता यहावे मुझ पर कृपा करे और शिशु जीवित रह जाए। मगर अब जब शिशु की मृत्यु हो चुकी है, क्या अर्थ है मेरे उपवास का? क्या इससे मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? मैं उससे जा मिलूंगा, लौटकर वह मेरे पास ना आएगा। दाविद अपनी पत्नी बैतशेबा को सांत्वना देते रहे, वह उसके निकट रहे और उसमें संबंध बना। उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ जिसे दाविद ने शलोमोन नाम दिया। वह यहावे का प्रिय हुआ। भविष्यद्वक्ता नाथान के द्वारा यहावे ने एक संदेश भेजा, तब यहावे की आज्ञा पर उन्होंने उसे येदीदिया नाम दिया। योआब ने अमोनियों के राबा नगर से युद्ध छेड़ दिया और इस राजधानी को अपने अधीन कर लिया। तब योआब ने दूतों द्वारा दाविद को यह संदेश भेजा, मैंने राबा नगर से युद्ध किया है और मैंने जल नगर पर अधिकार भी कर लिया है। अब आप बाकी सैनिकों को इकट्ठा कर नगर की घेराबंदी कर लीजिए और इसे अपने अधिकार में कर लीजिए। ऐसा ना हो कि मैं इस पर अधिकार कर लूं और यह मेरी संपत्ति के रूप में प्रख्यात हो जाए। तब दाविद ने सैनिक इकट्ठा किए और राबा नगर पर हमला किया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उनके राजा के सिर से उसका मुकुट ले लिया। इस स्वर्ण मुकुट का वजन 1 तालांत था। एक अमूल्य रत्न भी इसमें जड़ित था। यह मुकुट दाविद के सिर पर रखा गया। दाविद इस नगर से अत्यंत भारी मात्रा में लूटी हुई सामग्री अपने साथ ले गए। इस नगर से दाविद नगर निवासी भी अपने साथ ले गए, जिन्हें उन्होंने श्रमिक बनाकर उन्हें आरी, कुदाली, कुल्हाड़ी से संबंधित कार्यों में लगा दिया और इन्हें ईंट निर्माण की भट्टियों में भी संलग्न कर दिया। यही उन्होंने अमोनियों के सारे नगरों के साथ किया। इसके बाद दाविद और सारे सैनिक यरूशलेम लौट गए।